जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंग न यशोदा जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंग न जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदे की जय श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताई की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय समवेत भक्त वृंदे की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय श्री जगन्नाथ स्नान यात्रा महामहोत्सव की जय शिल श्रीधर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय शिल मुकुंद दत्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय गौर प्रेमानंदी और ग्लोरियस सिंह Supreme Devotees, all glories to Supreme Devotees, all glories to Supreme Devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. तो आज का जो विषय है, कितने लोगों को पता है आज का विषय क्या है? अच्छा हाँ, क्या है? आजीवन ब्रह्मचर्य. आजीवन ब्रह्मचर्य कैसे करें? ब्रह्मचारी जीवन जो है के बहुत से उदाहरण हैं, हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी हैं और दूसरे संप्रदायों में भी हैं, मायावादी संप्रदाय में भी, और मायावादी संप्रदाय में तो ज़्यादा ही हैं. विवेकानंद भी आजीवन ब्रह्मचारी थे. तो विवेकानंद बचपन से ही यही सोचते थे कि वो जो है आजीवन ब्रह्मचारी बने, है ना. लेकिन उनको जो है वैष्णव सिद्धांत का उचित प्रशिक्षण नहीं मिला, जो भी हो जैसे भी हो, उचित प्रशिक्षण नहीं मिला वैष्णव सिद्धांत का. लेकिन उनकी श्रद्धा तो थी, अर्चा विग्रह की पूजा में भी श्रद्धा थी. तो एक बार वो जो है सीताराम के अर्चा विग्रह लेके आए मिट्टी के, उनको कहीं से मिल गए, उन्होंने खरीद लिए, तो पूजा करने लगे सीताराम की, अर्चा विग्रह की पूजा करने लगे मिट्टी के. फिर किसी ने कहा, उनका नाम नरेंद्र था, नरेंद्र तुम जो है सीताराम की पूजा करते हो, वो तो विवाहित हैं, और तुम तो आजीवन ब्रह्मचारी तुम रहना चाहते हो, तुम क्यों पूजा करते हो सीताराम की? तो विचार करने लगे, हाँ ठीक कह रहे हैं. तो फिर बहुत उन्होंने जो है विचार किया और बड़ा उनको जो है धर्म संकट भी दिखाई दे रहा था कि श्रद्धा तो थी पूजा करने में, लेकिन फिर क्या किया, तो अपने घर की छत से उन्होंने सीताराम के अर्चा विग्रहों को नीचे गिरा दिया और बहुत देर तक शोक करते रहे, बहुत शोक करते रहे, है ना. लेकिन फिर मैं विचार कर रहा था कि उन्होंने ऐसा किया तो कुछ और विचार करते कि हनुमान जी भी तो उनके ही भक्त हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी. तो सीताराम का तो शरीर दिव्य है, आध्यात्मिक है, है ना. तो उनका जो है शरीर, उनका चरित्र सब दिव्य है, तो इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है. हनुमान जैसे जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी उनके अनन्य भक्त हैं, अनन्य उपास, और किसी को जानते ही नहीं. नान्यम जाने नैव जाने न जाने, अन्य को जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, किसी को नहीं जानते, है ना. और जब हनुमान जी सीता जी खोज में गए तो सीता को जो है वो जानते नहीं थे, सीता का कभी उन्होंने दर्शन नहीं किया. नहीं, सब बानरों को आदेश मिला था कि सीता की खोज करो, लेकिन सीता को किसी बानर ने नहीं देखा. लेकिन केवल इतना जानते हैं कि मतलब असीमित सौंदर्य, सीता जी का सौंदर्य असीमित है और गुण भी उनके असीमित हैं, असीमित गुण हैं उनके, असीमित सौंदर्य हैं. तो इस आधार पर ही खोजने गए थे. तो बहुत मुश्किल है ऐसे खोजना. और हनुमान जी जो है जब खोज रहे थे तो लंका में जो है वो रात में ही खोज रहे हैं, और रात में जो है और स्त्रियों में खोज रहे हैं, और स्त्रियां जो है सो रही हैं, और उनके अस्त व्यस्त, उनके शरीर भी अस्त व्यस्त हैं, वस्त्र भी अस्त व्यस्त हैं, ऐसे में खोज रहे हैं. तो फिर विचार करने लगे कि मेरा तो ब्रह्मचर्य के जो है विरुद्ध है ये कार्य है कि मैं जो है स्त्रियों का दर्शन कर रहा हूँ. लेकिन फिर बाद में विचार किया कि नहीं, मैं तो स्त्रियों को भोगने की भावना से थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सीता महारानी का जो है खोज करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, और उनकी खोज करने के लिए तो जो है मैं स्त्रियों को देख रहा हूँ, तो उसमें मेरा जो है कोई मेरे ब्रह्मचर्य में कोई बाधा नहीं आ रही. तो उनको बड़ा बल मिला कि मैं तो भोगने की भावना से नहीं ऐसा कर रहा हूँ. फिर मंदोदरी को देखा, मंदोदरी को देखा तो बहुत सुंदर, तो उनको लगा कि हाँ मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया. तो वो जो है इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए. तो बानर स्वभाव चंचल होता है, तो बहुत बड़ा खम्भा था, तो बार बार चढ़े फिर उतने चढ़े उतरे उसी खम्भे में चढ़े उतरे बार बार, कुर्सी के मारे कुर्सी समा नहीं रही उनकी। फिर अचानक दिमाग में आए कि सीता नहीं हो सकती, कि सीता के गुण ऐसे नहीं है, पति के बिना वो क्यों अपना श्रृंगार करेंगी, ये तो खूब श्रृंगार किए हुए है और खूब प्रकार के भोग सब इसकी इनके पास हैं, तो भोगों में और श्रृंगार तो जो है सीता जी कभी धारण नहीं कर सकती राम के बिना पति के बिना, तो फिर नहीं ये नहीं है। तो इस तरह से मैं ये बता रहा था कि हनुमान जी जो है इतने बड़े भक्त हैं और जो है स्त्रियों के संपर्क में भी हैं, लेकिन तो भी उनके ब्रह्मचर्य की रक्षा हो रही है, और तो भक्ति के द्वारा जो है ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है, ये बात है समझने की। विवेकानंद ने से किसी स्त्री ने कहा, विवेकानंद जब गए थे अमेरिका तो उन्होंने हिंदू के नाम पर उन्होंने जो है बहुत प्रभाव डाला था, हिंदू धर्म के नाम पर बहुत प्रभाव डाला था और लोग बहुत प्रभावित हुए थे। तो इनको देख करके जो विदेश की कोई महिला थी तो बोली कि मैं आपको पति बनाना चाहता हूँ, जिससे आपके जैसे पुत्र की मैं माँ बनूँ, मैं माँ बन सकूँ। तो विवेकानंद ने कहा कि अगर मुझसे जो पुत्र होगा वो पता नहीं मेरे जैसा होगा या नहीं होगा, आप मुझको ही अपना पुत्र मान लो, सीधी बात है, आप मेरे जैसे पुत्र की माँ बनना चाहती हो तो मुझे ही पुत्र मान लो, है ना। तो ये अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए ये बहुत अच्छा ये जो है तर्क है, कोई भी माता जी जो है अगर प्रस्ताव रखें हमारे सामने तो आप भी पुत्र बन जाइए, आप ही हमारी माता जी हैं, हम आपके पुत्र हैं, है ना। तो बहुत अच्छी जिसमें सुरक्षा है, है ना। तो ये जो है कुछ बातें हैं। चार कुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं चार कुमार, और ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं जो मानस पुत्र कहलाते हैं। लेकिन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने शरीर को ही विकसित नहीं होने दिया, ये शक्ति तो उनके अंदर थी कि अपने शरीर को ही उन्होंने विकसित नहीं होने दिया, और इस प्रकार से वे कुमार कहलाते हैं, कुमार ही कहलाते हैं। कुमार का मतलब 5 वर्ष से जब कोई ज़्यादा होता है तो कुमार नहीं कहलाता, अभी तो बहुत से कुमार हैं 5 साल से ज़्यादा, अशोक कुमार अरविंद कुमार बहुत कुमार हैं, लेकिन कुमार अवस्था जो है 5 वर्ष तक होती है, 5 वर्ष के आगे कुमार अवस्था नहीं कहलाती। तो 5 वर्ष से आगे उन्होंने अपनी अवस्था को ही नहीं बढ़ने दिया। तो हम भी ये ऐसा नहीं कर सकते, हम भी ऐसा नहीं कर सकते कि 5 साल से आगे हम अपनी अवस्था को बढ़ने ना दें, उन्होंने तो किया तो ये हम नहीं कर सकते। लेकिन नारद जी भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो नारद जी की बात मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ब्रह्म एवंवर्त पुराण में कुछ दूसरे ही कल्प की कथा है, तो प्रत्येक कल्प में जो है नारद होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने नारद से और भी अन्य पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी, नारद जी भी हैं उनके पुत्र और भी दूसरे पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी ने पुत्रों को सृष्टि करने की आज्ञा दी। तो पिता की बात सुनकर नारद ने उनसे कहा, तो नारद जी क्या बोले, नारद बोले कि हे पितामह, पहले सनक सनंदन आदि बड़े पुत्रों को बुलाइए और उनका विवाह कीजिए। तत्पश्चात हम लोगों से ऐसा करने के लिए कहिए। जब पिताजी ने उन्हें तपस्या में लगाया है तब मुझे ही क्यों संसार बंधन में डाल रहे हैं। तो ऐसा जो है आपका पक्षपात क्यों हो? अहो, कितने खेत की बात है कि प्रभु की बुद्धि विपरीत भाव को प्राप्त हो रही है। आपने किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दिया है, किसी पुत्र को तो अमृत से भी बढ़कर तपस्या का कार्य दिया है, और किसी को आप विषय विषय भोग दे रहे हैं। पिताजी, जो अत्यंत निम्न कोटि के भयानक भवसागर में गिर जाता है उसका करोड़ों कल्प बीतने पर भी उद्धार नहीं होता है। ये तो जो है परिणाम है विषय भोगों का। भगवान पुरुषोत्तम ही सबके आदि कारण और निस्तार के बीज हैं, वही सब कुछ देने वाले हैं, भक्ति प्रदान करने वाले हैं, दास से सुख देने वाले हैं, सत्य और कृपामय हैं, वही भक्तों को एकमात्र शरण देने वाले हैं, भक्तवत्सल और स्वच्छ हैं, भक्तों के प्रिय, भक्तों के रक्षक और भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भी वही हैं, भक्तों के आराध्य हैं और प्राप्य भी उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कौन मूढ़ विनाशकारी विषय में मन लगाएगा? अमृत से भी देख प्रिय श्री कृष्ण सेवा छोड़कर कौन मूर्ख विषय नामक विष का भक्षण करेगा? विषय तो स्वप्न के समान नश्वर, तुच्छ, मिथ्या और विनाशकारी हैं। विस्तार बीजम सर्वेशाम बीजम च पुरुषोत्तमम सर्वदम भक्तिदम दास्य प्रदम सत्यम कृपामयम भक्तैक शरणम भक्त वत्सलम स्वच्छमेव च भक्तै प्रियम भक्तिनाथम भक्तानुग्रह कारकम भक्ताराध्यम भक्तसाध्यम विहाय परमेश्वरम मनोदधाति को मूढ़ो विषय नाश कारणे विहाय कृष्ण सेवाम च पीयूषाधिकां प्रियां को मूढ़ो विषमश्नाति विषमं विषयाभिधम स्वप्नवर्ण स्वरम तुच्छम असत्यम नाश कारणम। हे पिता, जैसे दीप शिखा का अग्रभाग पतंगों को बड़ा मनोहर दिखाई पड़ता है, समझ गए सब लोग? दीप शिखा का अग्रभाग पतंगों को बड़ा मनोहर दिखाई देता है, लेकिन अंत में क्या होता है उसका? विनाश है ना। जैसे बंसी में गुथा हुआ मांस मछलियों को सुखप्रद जान पड़ता है ना, और क्या होता है? विनाश है ना। उसी प्रकार विषयी पुरुषों को विषय में सुख दिखाई पड़ता है, परंतु वास्तव में वो मृत्यु का कारण है। ब्रह्मा जी के सामने वह ऐसी बात कहकर नारद जी चुप हो गए और वे अग्निशिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। तो नारद जी ने यह बात कही। फिर एक और प्रसंग है, उसमें भी ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा पालक हूँ, विद्या देने वाला हूँ, मंत्र देने वाला हूँ, तो मेरी आज्ञा से मेरी ही प्रसन्नता के लिए विवाह कर लो, ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर मुनिवर नारद के कंठ, ओठ और तालु सूख गए, गला भी सूख गया, ओठ और तालु सब सूख गए। वे भयभीत होकर विनय पूर्वक बोले। नारद जी ने कहा कि तात, वही पिता, वही गुरु, वही बंधु, वही पुत्र और वही मेरा ईश्वर है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न करा दे। सा पिता सा गुरुर बंधु सपुत्र सा मदीश्वर यह श्री कृष्ण पाद पद्मे दृणाम भक्तिम चकारे। तो ब्रह्म जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, गुरु हूँ, तो मेरी आगे सेवा कर लो। तो उन्होंने तर्क दिया, तो सीधे तो नहीं कहा कि नहीं आप कैसे मेरे पिता, कैसे गुरु हैं, लेकिन दूसरे तरीके से कहा कि पिता वही, वही गुरु है, वही ईश्वर है, वही बंधु है, वही पुत्र है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न करा दे। यदि बालक अज्ञानवश कुमार्ग पर चल रहे हों तो उन्हें को जो उस मार्ग से हटाता है वही करुणा निधान पिता है। लेकिन हम तो सही मार्ग पर चल रहे हैं और आप हमको जो है आदेश दे रहे हैं विवाह का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बालक अज्ञानवश कुमार्ग पर चल रहा हो तो उन्हीं को जो उस मार्ग से हटाता है वही करुणा निधान पिता है। जो श्री कृष्ण चरणों में लगी हुई भक्ति का त्याग कराकर पुत्र को विषय में लगाए, वो कैसा पिता है? नारद जी कह रहे हैं, तो इशारा क्या है समझ गए कि आप कैसे पिता हैं, है ना? शिष्टाचार के अनुसार वो सीधे नहीं बोल रहे हैं कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, ये शिष्टाचार तो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो श्री कृष्ण चरणों में लगी हुई भक्ति का त्याग कराकर पुत्र को दूसरे किसी विषय में लगाए वो कैसा पिता है? स्त्री संग है केवल दुख का ही कारण है, उससे सुख नहीं मिलता, वो तपस्या में विघ्न उपस्थित करता है। स्त्री का संग्रह तपस्या में और स्वर्ग में और भक्ति में और मुक्ति में और सत्कर्मों में विघ्न उपस्थित करने वाला है। मूढ़ चित्त गृहस्थों के घरों में तीन प्रकार की स्त्रियां पाई जाती हैं। तीन प्रकार की स्त्रियां पाई जाती हैं, किनके घरों में? मूढ़ चित्त गृहस्थों के घरों में। वो नहीं समझते हैं, एक है साध्वी, दूसरी भोग्या और तीसरी कुल्टा। ये सब की सब स्वार्थ परायण होती हैं। साध्वी स्त्री परलोक के भय से पति की सेवा करती है। साध्वी स्त्री परलोक के भय से इस लोक में अपने को बस अपने को यश मिलने के लोभ से पति की रक्षा की। इस लोक में अपने को यश मिलेगा, लोग प्रशंसा करेंगे, बड़ी पतिव्रता है, इसलिए तथा काम आसक्ति से भी निरंतर पति की सेवा करती है, उनकी पुत्र भी प्राप्त होंगे, तो ये साध्वी। फिर भोग्या स्त्री, भोग की अभिलाषणी होती है, वो सदा केवल काम आसक्ति से ही पति की सेवा करती है। भोग के सिवा और किसी हेतु से वो क्षण भर भी सेवा नहीं करती। भोग्य स्त्री जब तक वस्त्र आभूषण और उत्तम भोजन पाती है तब तक ही पति के बस में रहकर प्यारी बनी रहती है, ये भोग्य स्त्री के लक्षण है। और कुल्टा स्त्री कुल में अंगार के समान है। कुल्टा स्त्री तो और भी है ना, कुल में अंगार के समान है, यानी कुल का जला देगी, कुल पूरे कुल को जला देगी, कुल में अंगार के समान है, वो कुल का नाश करने वाली है। कुल्टा स्त्री कपट से ही पति की सेवा करती है, भक्ति से नहीं। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए अमृत के समान मधुर वचन बोलती हैं, क्रोध होने पर उनके मुख से विष के समान वचन निकलता है। यदि उनकी बात पर विश्वास किया जाए तो सर्वनाश ही हो जाता है। उनके अभिप्राय को समझना बहुत कठिन है, केवल उनका कर्म छिपा होता है। आप सब कुछ जानते हैं क्योंकि आप आत्माराम पुरुषों के ईश्वर हैं। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए और अब मुझे विदा कीजिए। कौन बोले? नारद जी बोले, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे विदा दीजिए, आप कल्प वृक्ष से बढ़कर हैं, मैं आपसे श्री कृष्ण की भक्ति की याचना करता हूं। ऐसा कहकर नारद जी ने पिता के चरण कमलों को पकड़कर तप के निमित्त जाने के लिए आज्ञा मांगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी की परिक्रमा एवं प्रणाम करके वहां से जाने को तैयार हो गए। तो मैं कुछ उतनी ही बातें पढ़ के सुना रहा हूं जो अपने विषय की हैं, आज का जो विषय है। जब ब्रह्मा जी ने और भी कुछ तर्क दिए, क्योंकि उसमें भी कुछ उस पक्ष में भी बहुत सी बातें होती हैं कि गृहस्थ धर्म है और गृहस्थ जीवन में भी भक्ति करने का अवसर मिलता है, और उसमें भी बहुत से जो गृहस्थ भक्त हैं वो सफल हुए हैं, लेकिन इस पक्ष में भी जो है बहुत से तर्क हैं और वो भी सही तर्क होते हैं इस पक्ष में भी, तो हम केवल इस पक्ष को ले रहे हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने उस पक्ष से भी बातें बताई नारद जी को कि नहीं उस तरह से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है, तो नारद जी फिर बोले, ब्रह्मा जी सब बातें कहकर चुप हो गए। तब नारद ने पिता से ये बात कही। नारद जी बोले, तात जो स्वयं सब कुछ जानकर अपने पुत्र को कुमार्ग में लगाता है वो पिता दयालु कैसे माना जा सकता है? सारा संसार पानी के बुलबुले के समान नश्वर है, जैसे जल की रेखा मिथ्या होती है, पानी में आप रेखा खींचते हैं है? क्या होता है, मिट जाती है। जल की रेखा मिथ्या होती है, उसी प्रकार तीनों लोग मिथ्या हैं। जिसका मन श्री हरि की दास्ता को छोड़कर विषय के लिए चंचल रहता है, उसका दुर्लभ मानव शरीर व्यर्थ हो गया। भव सागर में कौन किसकी प्रिया है और कौन किसका पुत्र या बंधु है, कर्ममयी तरंगों के उठने से इन सबका संयोग हो जाता है। तरंग वो तो तुरंत मिट जाती, तरंग कर्म की तरंगों से इन सबका संयोग हो जाता है और उन तरंगों के शांत होने पर एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, सब लापता हो जाते हैं। जो सत्कर्म करवाता है वही मित्र है, वही पिता और गुरु है। जो दुर्बुद्धि उत्पन्न करता है वो तो शत्रु है, उसे पिता कैसे कहा जा सकता है। इस प्रकार मैंने शास्त्र के अनुसार वेद का बीज बताया है। नारद जी कहते हैं तो इस तरह से नारद जी ने कुछ बातें ब्रह्मा जी से कही थी, और शिव जी के भी विषय में कुछ बातें हैं, और शिव जी क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने जो है योगियों के गुरु शंकर जी को बुलाकर प्रिय वाणी में कहा कि आप देवी सिंह वाहिनी को ग्रहण करिए, देवी सिंह वाहिनी को आप ग्रहण करिए। भगवान कृष्ण ने जो है योगियों के गुरु शिव जी को बुलाया अपने पास और प्रिय वाणी में कहा। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर शिव हंसे और डरते हुए विनीत भाव से उन प्राणेश्वर प्रभु अच्युत से बोले। डरते हुए कि मेरी वाणी कुछ अपराध ना हो जाए मेरे से, डरते हुए बोले, महादेव जी ने पहले प्रकृति के दोष बताकर उसे ग्रहण ना करने की इच्छा प्रकट की, फिर इस प्रकार कहा। श्री महेश्वर बोले, नाथ मुझे ग्रहणी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ग्रहणी नहीं चाहिए, मुझे तो मन चाहा वर दीजिए। जिस सेवक को जो अभीष्ट हो श्रेष्ठ स्वामी उसे वही वस्तु देते हैं। मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, आपके चरणों की दासता सेवा करता रहूं, ये लालसा मेरे हृदय में निरंतर बढ़ रही है। आपके नाम जप से, आपके चरण कमलों की सेवा से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। मैं सोते जागते हर समय अपने पांच मुखों से आपके नाम और गुणों का निरंतर गान करता हुआ सर्वत्र विचरा करता हूं। मेरा मन कोटि कोटि कल्पों तक आपके स्वरूप का ध्यान करने में ही तत्पर रहे। कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। भोग इच्छा में नहीं, मेरा मन भोग इच्छा में न लगे, भोग इच्छा में नहीं, मेरा मन योग और तपस्या में ही संलग्न रहे। आपकी सेवा, आपकी पूजा, आपकी वंदना और आपके नाम कीर्तन में ही इसे सदा उल्लास प्राप्त हो। किसको? मेरे मन को। इसे मतलब मेरे मन को सदा उल्लास प्राप्त हो। इनसे विरत होने पर ये उद्विग्न हो उठे। क्या उद्विग्न हो उठे? मेरा मन। इनसे विरत होने पर ये उद्विग्न हो उठे, ऐसा वरदान दीजिए। संपूर्ण वरों के ईश्वर, आपके नाम और गुणों का स्मरण, कीर्तन, श्रवण, जप, आपके मनोहर रूप का ध्यान, आपके चरण कमलों की सेवा, आपकी वंदना, आपके प्रति आत्मसमर्पण और नित्य आपके प्रसाद का भोजन, ये जो नौ प्रकार की भक्ति है, उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मानकर दीजिए। इसमें दूसरी तरह से बताया गया है। पहला है आपके नाम और गुणों का स्मरण, दूसरा कीर्तन, तीसरा श्रवण, चौथा जप, पांचवा आपके रूप का ध्यान, छठा चरण कमलों की सेवा, सातवां वंदना और आठवां आत्मसमर्पण और नवा प्रसाद भोजन। इस प्रकार से नौ प्रकार की भक्ति, ये नौ प्रकार की जो भक्ति है उसी को मुझे श्रेष्ठ वरदान मानकर दीजिए। प्रभु मुझे नहीं चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए? सारष्टि नहीं चाहिए। सारष्टि मतलब आपके समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये मुझे नहीं चाहिए। सालोक्य नहीं चाहिए, आपके समान लोक, की प्राप्ति भी नहीं, सारूप नहीं चाहिए, आपके समान रूप की प्राप्ति नहीं चाहिए, सामीप्य आपके निकट रहने का सौभाग्य वो भी नहीं चाहिए, साम्य आपकी समता की प्राप्ति वो भी नहीं चाहिए, और लीनता आप में मिलकर एक हो जाना या सायुज्य वो भी नहीं चाहिए। मुक्त पुरुष ये 6 प्रकार की मुक्तियां बताते हैं और 18 सिद्धियां, 6 प्रकार की मुक्तियां और 18 सिद्धियां। 18 सिद्धियां क्या हैं? पहला अणिमा, दूसरा लघिमा, तीसरा गरिमा, चौथा प्राप्ति, पांचवा प्राकाम्य, छठा महिमा, सातवां ईश्वत्व, आठवां वश्यत्व, नवा सर्वकामावसायिता, दसवां सर्वज्ञता, ग्यारहवां दूर श्रवण, 12 परकाय प्रवेश, 13 वाक सिद्धि, 14 कल्प वृक्षत्व, 15 सृष्टि शक्ति, 16 संहार शक्ति, 17 अमरत्व और 18वां सर्वाग्र गण्यता। 18 प्रकार की सिद्धियां मानी गई हैं तो मुझे ये नहीं चाहिए। हे सर्वेश्वर, योग तप सब प्रकार के दान व्रत यश कीर्ति वाणी सत्य धर्म उपवास संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण स्नान आपके सिवा अन्य देवता का पूजन ये भी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। देव प्रतिमाओं का दर्शन, 7 द्वीपों की 7 परिक्रमा, समस्त समुद्रों में स्नान ये भी नहीं चाहिए। सभी स्वर्गों के दर्शन ये भी नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, रुद्र पद नहीं चाहिए, विष्णु पद नहीं चाहिए तथा परम पद ये भी नहीं चाहिए तथा और भी जो अनिर्वचनीय वांछनीय पद हैं वे सब के सब आपकी भक्ति के कला अंश की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। कला अंश में 16वीं कला की भी 16वीं कला की बराबर नहीं है आपकी भक्ति के। तो इस तरह से हमने इस पक्ष में कुछ चर्चा की है। हमारे जो है जो 12 महाजन हैं उनमें भी आप गिन सकते हैं कि कितने महाजन ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। 12 महाजन का एक श्लोक है ना, स्वयंभू नारदा शंभू, स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी क्या हैं, गृहस्थ हैं। हाँ गृहस्थ हैं लेकिन वैसे संतान तो उन्होंने अपने शरीर और मन से उत्पन्न किए हैं, पत्नी से संतान नहीं उत्पन्न की। खैर जो भी है, गृहस्थ भी हैं ब्रह्मचारी भी हैं। स्वयंभू नारदा, नारद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, स्वयंभू नारदा शंभू ये गृहस्थ हैं, है ना, कुमार 4 कुमार नैष्ठिक ब्रह्मचारी, कपिल और मनु गृहस्थ हैं, फिर प्रहलाद गृहस्थ, प्रहलादो जनको गृहस्थ हैं, भीष्मो ब्रह्मचारी, फिर बलि वैया सकी यानी सुखदेव गोस्वामी और वयम यानी यमराज गृहस्थ हैं। एक गृहस्थ एक ब्रह्मचारी ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं है। 7 ब्रह्मचारी, 12 तो हैं, कुल तो 12 ही हैं। अच्छा 4 कुमार को 4 तो 4 कुमार को 4 अगर मान लोगे तो 15 हो जाएंगे, है 15 महाजन हो गए। अगर 4 को 4 मान लेंगे तो 15, तो 8 ब्रह्मचारी 7 गए। अच्छा तो अपनी संख्या बढ़ा ली। तमाल कृष्ण गोस्वामी ने भी जब विवाह हुआ था उनका तो उसके ठीक बाद ही संन्यास लिया था, है ना। क्या कौन सी माता जी थी वो, है माद्री थी। अच्छा तो प्रभुपाद संन्यास देना भी चाहते थे और संन्यास नहीं भी देना चाहते थे, है ना। प्रभुपाद विरोध भी नहीं करते थे कमाल कृष्ण गोस्वामी का, लेकिन साथ साथ जो है उनको दुख भी हो रहा था और वो मानते थे कि तुम्हारी जो पत्नी है वो मेरी लड़की है, प्रभुपाद कहते वो मेरी लड़की है ना। नहीं फिर संन्यास दिया प्रभुपाद ने, तमाल कृष्ण गोस्वामी को संन्यास दिया। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कुछ प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी। हाँ मकरध्वज नाम था ना, हाँ ये हमने सुना है लेकिन पढ़ा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं पर हो इस तरह से। और फिर कहीं पर ये बताया गया था कि हनुमान जी ने जब लंका में अपनी पूंछ को बुझाया था, समुद्र में अपनी पूंछ को बुझाया था, तो उनके पसीने की कुछ बूंद किसी मछली ने पी ली थी, उससे हुआ। और चैतन्य लीला में वो मुरारी गुप्त हैं, तो वो गृहस्थ तो हैं, तो उनकी पत्नी कुछ रहस्य है इस तरह का। चैतन्य लीला में नारद जी भी जो है श्रीवास पंडित हैं, गृहस्थ हैं, है ना, तो उनकी भी पत्नी है। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये जो भक्त हैं ये बहुत दिव्य स्थिति है, इनकी बहुत दिव्य स्थिति है। और अगर वो ऐसे कभी गृहस्थ होते भी हैं तो उनकी पत्नी के कारण भक्ति में कोई बाधा नहीं पैदा होती। तो हाँ जी, किसकी? हनुमान जी की? नहीं, हनुमान जी का विवाह नहीं हुआ, लेकिन पुत्र उत्पन्न हुआ मछली के गर्भ से। अब जो भी हो उनके पसीने से ही अगर पुत्र उत्पन्न हुआ,
धारावाहिक से भी सारा प्रचलन हुआ है, तो रामानंद सागर ने वो धारावाहिक में दिखाया है ना, इसलिए
चित्रकथा नहीं। लेकिन हो सकता है आधार कहीं पर हो, क्योंकि सभी पुराणों में सभी ग्रंथों में राम चरित मिलता है, तो अगर कुछ आधार हो तो भी मतलब हो सकता है कि कुछ आधार हो इसका, तो इसलिए हम, हाँ इसलिए हम, जैसे कि नारद जी हैं तो ब्रह्मवर्त पुराण में जिस कल्प की कथा बताई गई है तो उसमें वो 50 जो गंधर्व की पुत्रियां थीं उनके पति थे, वो ब्रह्म नाम के गंधर्व थे, तो उनमें से एक जो है मालावती नाम की जो स्त्री है उसने जो है मतलब पतिव्रत का पालन किया था। तो फिर वही मालावती स्त्री, मेरा सुझाव है कि श्रीवास पंडित की पत्नी बनी मालिनी, नाम भी जो है बहुत मिलता जुलता है, तो मालावती ने अपने पति को भी जीवित किया और भगवान से प्रार्थना की थी और भगवान ने जीवित किया था उपबरहण को, तो इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन ब्रह्मचारी जीवन का जो है लक्ष्य बनाना बहुत अच्छा है, अपने आप में बहुत अच्छा है ब्रह्मचारी जीवन का लक्ष्य बनाना। और उसके बाद फिर जब पूर्ण आत्मसमर्पण कर दें तो फिर भगवान जैसा आदेश दें फिर कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जब तक हम में जो है अंतर पड़ता है तब तक हमें जो है इस विषयों के त्याग का अभ्यास करना ही चाहिए। तो अपनी जो इच्छा है वो यही होना चाहिए कि हमें कृष्ण की भक्ति में लगे रहें, तो लक्ष्य यही है कि कृष्ण की भक्ति में लगे रहें और विषयों से हम दूर रहें, है ना। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाए कि चाहे विषय में लगें और चाहे विरक्ति में लगें कोई अंतर नहीं है, जिनका मन कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है तो वो अलग बात है, लेकिन साधक की ओर से, साधक की दृष्टि से ये उचित है कि हमारी ऐसी इच्छा हो। हाँ जी,
लग नहीं रहा था पढ़ रहे सामने बोल रहे प्रश्न कि आप टॉपिक जैसे मैंने समझा है कि हाउ टू स्टे ब्रह्मचारी लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी, तो भैया आपके एक्सपीरियंस कुछ हमें प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जो कि 4-5 चीजें लेकिन करना चाहिए। वैसे जनरल थिंग्स तो सब कर रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह, फिर भी कुछ चीजें ऐसे जो प्रैक्टिकल हम याद रखें जिससे कि हमें और सहायता हो लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी प्रैक्टिस।
सबसे जो आवश्यक है वो सवेरे की साधना है, और प्रभुपाद ने अपना शरीर जब छोड़ा था तो उस समय उन्होंने सवेरे की साधना को ही एकमात्र उपदेश दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये आपको सत्वगुण तक लाएगी। तो अगर जो है एक शब्द में, दो शब्दों में अगर कुछ बताया जाए तो तो सवेरे की साधना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें हमें प्रारंभ में विष की तरह भी लग सकता है, क्योंकि कई बार नींद आती नहीं ठीक से, गहरी नींद नहीं आती है, और उस समय फिर नींद आती है और बड़ी अच्छी नींद आती है, और गहरी नींद भी आती है ना, और उसी समय ही फिर सैया छोड़ना होता है, तो वो विष की तरह लगता है। यद्यग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो सात्विक सुख उसी को कहा जाता है। भक्तों का संग, हम भक्तों की संगति में रहते हैं, ये जो है हमारे लिए बहुत सुरक्षा का कवच है, सुरक्षा का कवच। जैसे कि कहा गया है कि माया देवी एक कोई व्यक्ति है मान लो, जो कि लकड़ियाँ तोड़ती है, और पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं, तो कोई व्यक्ति जो है आसानी से तोड़ देगा। वही पतली पतली लकड़ियाँ अगर इकट्ठी होकर के एक बंडल बन जाए, तो फिर वो बड़े से बड़ा पहलवान भी नहीं तोड़ पाएगा। तो उसी प्रकार से भक्तों की संगति, प्रभुपाद ने यह आंदोलन जो बनाया है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, तो संघ का मतलब यूनियन होता है ना, यूनिटी। तो प्योरिटी इज फोर्स कहा जाता है, लेकिन यूनिटी इज फोर्स कलयुग में, तो यूनिटी है, संघ है शक्ति कलयुग। अब हमारे अंदर प्योरिटी तो नहीं है, तो प्रभुपाद ने प्योरिटी इज फोर्स कहा है, प्योरिटी इज फोर्स है, लेकिन अगर प्योरिटी नहीं है तो यूनिटी इज फोर्स। तो हमें जो है, तो प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या दिया है, संघ दिया, कि हम लोग संघ में रहें। प्रभुपाद अकेले थे, उनके अंदर प्योरिटी थी, तो वह अकेले उन्होंने जो है इतना बड़ा काम किया। हम अकेले, हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है, तो अकेले में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए क्या है, यूनिटी। तो संघ है शक्ति कलयुग, कलयुग में जो है संघ में शक्ति है, तो इसलिए प्रभुपाद ने हमको संघ दिया। तो हमें हमेशा भक्तों की संगति में रहना चाहिए। तो ये जो है सुरक्षा की विधियां हैं, और ये बहुत शक्तिशाली विधि है, और इसके बिना हम माया के सामने बिल्कुल कमजोर हैं। तिनके तिनके जो है आंधी आएगी, तिनके का पता नहीं चलेगा, हम तो तिनके माया के सामने। वही तिनके इकट्ठे होकर के बंडल बन जाए, तो आंधी में भी नहीं उड़ेंगे, है ना। तो हम लोग जो है अगर इस संघ में रहते हैं, तो और छह गोस्वामी ये भी जो है मतलब हमारे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। तो छह गोस्वामी कैसे कैसे परिवार से आए, और कितना ऊंचा उनका कुल है, और कितने धनी और कितने सम्मानित, कितने प्रतिष्ठित है ना, और वो जो है सब छोड़ करके आए और वृंदावन में रहे, विरक्ति का जीवन उन्होंने बिताया। तो छह गोस्वामी को अगर याद रखें, छह गोस्वामी हाँ, यही छह गोस्वामी करे क्या करे ना करी, यही छह गोस्वामी करी चरण बंधन, करी मन करता हूँ, यही छह गोस्वामी करी चरण बंधन, जहाँ हुई थी विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। तो अगर आपको अभीष्ट है कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना और जो है विषयों से सुरक्षा, तो आपकी जो है अभीष्ट की पूर्ति छह गोस्वामी को अगर याद करते हैं, तो छह गोस्वामी को याद करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत शक्तिशाली है उनको याद करना। और इसमें भी वही है ना कि श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, यही छह गोस्वामी करी चरण बंधन, जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। तो चार पंक्तियाँ हैं, ये आपके जो है सुरक्षा मंत्र है। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, यही छह गोस्वामी करी चरण बंधन, जहाँ होते विघ्न नाश अभीष्ट पूर्ण। तो छह गोस्वामी इनको याद करिए, छह गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी का तो विवाह भी कर दिया था, उनके पिता ने विवाह कर दिया था, और जो है विवाह कैसे किया, अप्सरा जैसी पत्नी से विवाह किया, इंद्र जैसा ऐश्वर्य और अप्सरा जैसी पत्नी। लेकिन रघुनाथ दास जो है श्री चैतन्य के चरणों में ऐसे पागल हैं कि उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब उनकी माता ने कहा कि रघुनाथ को जो है बांध करके रखो, ये तो पागल हो गया है, तो उनके पिता ने क्या कहा कि चैतन्य ने कहा कि जिस पर कृपा हो गई है उसको कौन से बंधन से बांधा जा सकता है, सबसे बड़ा बंधन तो धन संपत्ति है और स्त्री है, और वो उससे हमने इसको बांधा है, और जब ये नहीं बंध रहा है, उसी से नहीं बंध रहा, तो कौन से बंधन से बंध सकता है, सबसे बड़ा बंधन स्त्री और धन है। हाँ जी, किस प्रकार करना चाहिए? अगर इसमें बताया गया है कि यही छह गोस्वामी करी चरण बंधन, इन छह गोस्वामियों के चरणों की वंदना करता हूँ मैं, है ना, तो आप इनका नाम लेते हैं इसी भाव से कि आप इनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, आपके अंदर जो है अगर आदर की भावना है इनके प्रति और आप इनका नाम लेते हैं तो ये जो है आपकी वंदना हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न,
ये प्योरिटी है, प्योरिटी फोर्स, तो हाउ कम प्योरिटी, प्योरिटी कहाँ से है?
शुद्धता, शुद्धता जो है ये कहाँ से आती है? ये भक्ति से ही आती है, भक्ति के द्वारा ही हम शुद्ध होते हैं। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो संपूर्ण आत्मा को स्नान करा देता है ये, चेतो दर्पण मार्जनम, चतुर्पी दर्पण का मार्जन करता है श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये सब भक्ति की विधियाँ हैं, ये हमें शुद्ध करती हैं, चाहे कोई भी विधि हो, भक्तों का संग है, श्रवण है, कीर्तन है, सभी जितने कार्यक्रम प्रभुपाद ने दिए हैं सब शुद्ध करने के लिए हैं। आप बाहर प्रचार कर रहे हैं तो किसी न किसी कार्य में लगे रहिए, तो कृष्ण की सेवा के हजारों प्रकार हैं, किसी न किसी कार्य में आप लगे रहिए तो आप माया की सेवा से बचे रहेंगे, और माया की सेवा से आप दूषित होते हैं और कृष्ण की सेवा से आप शुद्ध होते हैं, ठीक है। हाँ अजित गोविंद,
जैसे प्रोवर्ब होता है कि भक्त जब इंद्रिया कंट्रोल कर सकते हैं भगवान कृष्ण की सेवा करके, उनका रूप को स्मरण करके, तो जैसे आपने बताया मायावादी लोग होते हैं वो भी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं, बट वो कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि प्रोवर्ब होते हैं केवल एक ही रास्ता है इंद्रियों को कंट्रोल करना है, वह है कृष्ण भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट मायावादी जैसे आपने विवेकानंद का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसे कई सारे लोग हैं वो भी अपने इंद्रियों को कंट्रोल किए हुए हैं, और हालांकि सबसे बड़ा आकर्षण है स्त्री का आकर्षण, पर वो फिर कैसे कर देता है, उनके पास क्या होता है ऐसा, क्योंकि भगवान गीता में होता है विषय अभिनी वर्तन से, तो जब तक हाई डेसी मिलता कंट्रोल करना मुश्किल है।
इसका उत्तर यही है कि भक्ति के बिना तो कोई आगे बढ़ता ही नहीं है, तो भक्ति तो वो करते ही हैं, है ना, लेकिन होता क्या है कि ये ने रविंदाक्ष विमुक्ति मानस तो यस्त भावात अभिशुद्ध बुद्धिया, कि वे अपने को फिर जब विमुक्त समझते हैं तो उनका भाव अस्त हो जाता है, तो उनका पहले भाव उदय हुआ, कृष्ण के प्रति भाव उदय हुआ, और वो जो है मतलब मुक्ति के धरातल पर आ गए, हाँ, और चूँकि मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भक्ति की थी, और मुक्ति पाने के बाद अब वो अपने को समझते हम मुक्त हो गए हैं, तो उनका भाव अस्त हो जाता है कि अब भक्ति की आवश्यकता नहीं है, अभी शुद्ध बुद्धि है, तो बुद्धि उनकी शुद्ध नहीं है। आरोह के तृण परम पदम तथा, तो बड़े कष्ट से वो परम पद में भी पहुंच जाएं, या ब्रह्म पद है, ब्रह्म साक्षात्कार, पदम दधो अनादृत उसमें दंग गया, तो आपका आपके चरणों को आदर ना करने के कारण वो गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। हो सकता है वो स्त्री के साथ ना गिरें, लेकिन वो भी एक प्रकार का पतन है कि वो स्कूल खोलते हैं या अस्पताल खोलते हैं, तो इस प्रकार के कार्यों में जो है वो लग जाते हैं, तो वही पतन है। हालांकि वो सत्वगुण में है, लेकिन सत्वगुण से जो है ऊपर वो नहीं बढ़ पाते ना, तो वो भी एक पतन है, ठीक है ना।
छोटा सा प्रश्न और है, जैसे बड़ी प्रेरणा मिली थी जब आपके बारे में पता चला था कि आप डेली गीता का एक चैप्टर का उच्चारण करते हैं, और हर मतलब इसी ऑर्डर में 18वें चैप्टर से लेके 1-2-3 तक, तो वो जी इससे भी अगर जैसे मतलब क्या लाभ होता है, जी अगर हम लोग भी अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और गीता के श्लोक का उच्चारण करना
अजित गोविंद से मैं बनवाता हूँ ना वो लिस्ट पूरे साल भर का, कि मेरे कौन से अध्याय का जो है किस तारीख को अभ्यास करना है, तो 18 की संख्या के बाद फिर एक संख्या आती है, इस तरह से पूरे साल की डेट ये बना के देते हैं मुझे तो ये मेरा नियम है कि गीता के एक अध्याय का अपने मन में अभ्यास करता हूँ। तो ये मैं अभी सबको तो नहीं बताता हूँ, लेकिन अगर कोई बाधा ना हो, आपकी और जितनी सेवाएं हैं और जितने नियम हैं उनमें अगर कोई बाधा ना हो, तो आप जो है गीता के श्लोकों का अभ्यास का जो है कुछ नियम बनाइए, आप नियम बनाइए। अगर ज़्यादा नहीं तो श्लोक संख्या आप लिखिए, तो आप लिख सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो गीता के पहले अध्याय के आप जो है एक दिन में आप 5 श्लोक ही लिखिए, या ऐसे नियम बना लिए कि आप गीता के 5 श्लोक आप लिखते हैं, फिर अगले दिन 5 श्लोक लिखें, तो लिखने का अभ्यास करिए, या बोलने का अभ्यास करिए, या याद करने का अभ्यास करिए। तो मैं तो जैसे ही उठता हूँ तो 3:45 से पहले भी अगर उठ जाऊँ तो उस समय तो मैं कुछ और काम करता हूँ लिखने का, लेकिन 3:45 ठीक 3:45 में स्नान की तैयारी करता हूँ। तो 3:45 से फिर मैं देखता हूँ लिस्ट में कि आज की तारीख में मेरा कौन सा अध्याय, तो उस अध्याय का पहले से लेकर के अंत तक पूरा अध्याय मैं श्लोक संख्या के साथ में अभ्यास करता हूँ। अभी तक मेरा अभ्यास पूरा नहीं हुआ कि श्लोक संख्या के साथ में मतलब कोई श्लोक बताऊँ कि भाई इस अध्याय का ये श्लोक संख्या है, अब श्लोक बताइए, तो हो सकता है मैं बता दूँ, हो सकता है ना बता पाऊँ, अभ्यास पूरा नहीं हुआ मेरा। तो मैं इस तरह से अभ्यास कर रहा हूँ, तो श्लोकों का अभ्यास तो था मेरा, लेकिन श्लोक संख्या का पता नहीं कि शुरू से पूरा अध्याय में पाठ कर सकता था, लेकिन कोई श्लोक संख्या का श्लोक संख्या कौन सा श्लोक है तो मुझे पता नहीं, तो बहुत सालों से ऐसा था। लेकिन मैं अभ्यास कर रहा हूँ कि कोई श्लोक संख्या भी कहे तो मैं उस अध्याय की उस श्लोक संख्या का, लेकिन अभी इतना है कि अगर आप अध्याय संख्या बताएं, श्लोक संख्या बताएं और शुरू के शब्द बताएं, तो मैं बता दूंगा कोई भी श्लोक हो गीता का, इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप शुरू के शब्द ना बताएं तो फिर हो सकता है सोचना पड़े और कुछ जो है कठिनाई हो सकती है मुझे। तो ये गीत बहुत जो है अनुकूल है इसमें कि आप गीता के श्लोकों का अभ्यास करें। और दूसरा नियम मेरा ये भी है कि जो गीता क्लास होता है शाम को, तो वो गीता का जो है पिछली बार जो भी श्लोक हुआ था वो श्लोक को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ अपने मन में। जब भी खाली होता हूँ, तो बाथरूम में भी हूँ, तो भी मैं श्लोक बोलता रहता हूँ। तो इसमें कोई दोष नहीं है कि आप अशुद्ध अवस्था में भी जो वैदिक मंत्र हैं उनका आप उच्चारण नहीं कर सकते अशुद्ध अवस्था में, लेकिन जो भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत है, तो इसमें जो है कोई दोष नहीं होता है। तो आप जो है गीता के श्लोक का अभ्यास कर सकते हैं अशुद्ध अवस्था में भी। तो वो मेरे दिमाग में रहता है कि कौन सा श्लोक हुआ था गीता का। अब कई बार तो एक सप्ताह तक क्लास नहीं होता है, कई कारण होते हैं क्लास नहीं हुआ, तो मेरे दिमाग में वो श्लोक रहता है और वो संख्या कौन सी है, कौन सा अध्याय का कौन सी संख्या का श्लोक है जो हुआ है, तो मैं उनको जो है हमेशा रिपीट करता रहता हूँ तो अपने मन में। तो इस तरह से भी आप जो है कुछ नियम बना सकते हैं। कई हाथ उठे हैं, अच्छा चलो आप पार्थ प्राण। अच्छा चलो आप बोलो। हाँ
जैसे बताया था कि हमारी इंद्रियां जो इनका राजा जो मन है, तो मन को अगर हम भगवान में लगाते हैं तो आत्मा भगवत धाम जाती है। मरते समय अनुच्छेद 34 में अगर मन को भगवान में स्थिर करते हैं तो आत्मा भगवत धाम जाती है। तो क्या कारण है, किस कारणवश आत्मा शरीर में है, अगर मन विषय भोगों में लगता है तो आत्मा को इससे कैसे कैसे बनती है आत्मा इसमें?
मन ए मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। बुद्धि आपकी निर्णय करने वाली है, लेकिन बुद्धि के द्वारा अगर आप मन को विषयों से नहीं हटाते हैं तो कोई लाभ नहीं है, तो इसलिए मन को हमें लगाना है। और सबसे जो सरल विधि है कि आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो आप सुनिए, तो मन को आप जो है कहाँ लगाएंगे, कान और मुंह के बीच में, इतना जो दूरी है इसी में ही आपको मन लगाना है। तो आप बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो कहाँ से निकल रहा है शब्द और कहाँ जा रहा है, तो इसी दूरी में जो है आप मन को अगर रखते हैं तो आपका जो मन है वो शुद्ध होता है। तो ये कीर्तन का जो है यही विधि है। ठीक है, हाँ जी, आप
इसके साथ आत्मा कैसे मतलब मन के साथ?
मन मन केंद्र बिंदु है ना, मन केंद्र बिंदु है, मन के ऊपर बुद्धि भी है और मन के नीचे इंद्रियां हैं, ये केंद्र बिंदु है। जैसे बताया गया कि मन सारथी बुद्धि है और मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं, है ना। तो मन जो है अगर सारथी है, अगर ढीला पड़ जाए कुछ ना करे तो लगाम है ना, तो वो इंद्रियों के बस में हो जाएगी। अगर बुद्धि जो है सारथी है और मन को जो है अच्छी तरह से दुरुस्त रखती है लगाम को, तो घोड़े भी बस में हो जाएंगे। तो इसलिए लगाम जो है मतलब होनी चाहिए बढ़िया, हाँ, अपने कंट्रोल में। तो बुद्धि के कंट्रोल में मन हो तो मन के कंट्रोल में इंद्रियां आएंगी, तो इस तरह से हमें मन को जो है महत्व देना है। ठीक है, अच्छा, हाँ, आप
बताते हैं प्रभुपाद जी कि शुद्ध भक्त कहीं पे भी प्रचार कर सकता है और कैसे भी स्थान में कर सकता है।
प्रभुपाद ने कहा कि शुद्ध भक्त कहीं भी प्रचार कर सकता है, तो प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, लेकिन मेरा ही प्रश्न है कि वे अपनी पत्नी को ही नहीं भक्त बना पाए, अब क्या उत्तर है? अपने पुत्रों को भी उन्हें छोड़ नहीं पड़ा, है ना, तो अपनी पुत्री और अपने पुत्रों को भी प्रभुपाद भक्त नहीं बना पाए। तो दोनों तरह की बातें हैं, डेविड भी जो है प्रभुपाद के साथ था या प्रभुपाद उसके साथ थे, उसने आक्रमण किया तो प्रभुपाद ने भी छोड़ दिया, फिर डेविड चाहता था प्रभुपाद को दोबारा बुलाना, लेकिन प्रभुपाद फिर नहीं गए उसके पास। तो कुछ बातें हम भावुकता में हम बोल जाते हैं लेकिन वो व्यवहारिक नहीं होती, तो हमें सब कुछ समझना है। तो प्रभुपाद मध्यम अधिकारी के धरातल पर कार्य कर, उत्तम अधिकारी के धरातल पर हैं, लेकिन मध्यम अधिकारी के धरातल पर उतर करके वो जो है प्रचार करते हैं। और मध्यम अधिकारी हमेशा देखता है, कि भगवान से प्रेम करना है और उनके जो अधीन है उनसे मित्रता करना है, और जो अज्ञानी है उन पर कृपा करना है, और जो ईर्ष्यालु हैं उनकी उपेक्षा करना है। तो प्रभुपाद ने मतलब ये नहीं कहा कि 100% लोग कृष्ण भावना भावित बन जाएंगे, प्रभुपाद ने 1% भी अगर आप अगर कृष्ण भावना भावित लोग बन गए तो विश्व का मुखड़ा बदल जाएगा। हाँ, जब प्रभुपाद के समय में बहुत से लोग आंदोलन को छोड़ के जा रहे थे, तो प्रभुपाद का ये आश्चर्य की बात नहीं है लोग छोड़ के जा रहे हैं, आश्चर्य की बात यह है कि अभी भी लोग रुके हुए हैं, ये आश्चर्य है। तो इसलिए कभी कभी हम लोग जो है भावुकता में तो बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन वो व्यवहारिक नहीं होता है। अच्छा, हाँ,
एक शुद्ध भक्त जो है उसकी जिम्मेदारी है कि सभी सुंदर स्त्रियों को प्रचार करे।
नहीं, वो देखना पड़ेगा प्रभुपाद ने। वो किस भाव में प्रभुपाद ने कहा है वो आगे पीछे की बातें देखनी पड़ेंगी, कि हम ये थोड़ी हम केवल सुंदर स्त्रियों में देखते रहेंगे कि कौन कौन सुंदर स्त्रियां हैं उनकी लिस्ट बनाएं उनको प्रचार करें तो ये तो नहीं है। तो लिखा है, अगर लिखा है तो मैं मानता हूँ लिखा है, लेकिन उसको देखना पड़े किस मतलब किस प्रसंग में प्रभुपाद ने ये बात कही है, तो वो चीज़ है। अच्छा, अभी समय तो हो गया, अच्छा चलो, अरविंदाक्ष। हाँ,
अपनी लाइफ से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जब मतलब ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें फैमिली अफेयर से या फिर अपोजिट सेक्स से, इससे कुछ ऐसा आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आया हो जो काफी मतलब लड़ाई करने वाला लड़ाई करने वाला हो मतलब, तो उससे कुछ हमें सीखने को मिले कुछ ऐसा सिचुएशन?
नहीं, मैं केवल एक बात यही बताऊंगा कि हम लोग बहुत कमजोर हैं, हम लोग माया शक्ति के सामने बहुत कमजोर हैं, और कमजोरी हमारे अंदर इतनी है कि मतलब हम कभी भी मतलब गिर सकते हैं। तो हमारी शक्ति नहीं है, हमारी शक्ति खड़े होने की भी नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम का सहारा आप लेते हैं, और ये आदत आप डाल लीजिए कि आप कृष्ण का नाम हमेशा बोलेंगे, और किसी भी, क्योंकि उस समय फिर ये लज्जा नहीं करना चाहिए कि मैं कितनी अशुद्ध स्थिति में हूँ या मैं मेरे दिमाग में कितने अशुद्ध विचार आ रहे हैं तो मुझे अब कृष्ण का नाम नहीं लेना है। ये जो है, अगर आपने ऐसे नियम बनाए तो अपना दुर्भाग्य है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तो दुर्देवम, यही मेरा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य हमारा ही होता है कि कोई अशुद्ध विचार आए हमारे मन में तो हम जो है कृष्ण का नाम छोड़ देते हैं भी, अब ऐसे में कृष्ण का नाम नहीं लेना है हमें, तो ये दुर्भाग्य है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नियम नहीं है, आप हर अवस्था में आप कृष्ण का नाम लीजिए, है ना। और अगर गलत इच्छा भी हो रही है उसकी पूर्ति के लिए भी हम कृष्ण का नाम लें तो कृष्ण जो है हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि कृष्ण देख रहे हैं कि ये तो विषय भोग चाहता है, ये तो मूर्ख है, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, है ना, तो मैं क्यों दूंगा। तो जैसे पिता को जो है, बच्चा अगर रोता भी है कि मुझे चाकू दो, तो पिता तो नहीं देगा ना, है ना, लेकिन दुकानदार दे देगा, पिता तो नहीं देगा। तो अगर हमारी गलत इच्छा भी है तो उसके लिए भी अगर हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं और हम अगर पूर्ति चाहते हैं तो उससे भी जो है हमारी रक्षा होगी, क्योंकि कृष्ण इतने जो है दयालु हैं, क्योंकि जो हरि नाम है ये हमारा माता पिता गुरु सब कुछ है, और इतना रक्षा और कहीं से हो भी नहीं सकती, क्योंकि आपको किसी भक्त का उतना संग नहीं मिल सकता है, गुरु महाराज का भी इतना संग नहीं मिल सकता है जितना हरि नाम का मिलता है। और हरिनाम के अपराधों से बचना, हरिनाम के अपराधों से बचना और हरिनाम का आश्रय लेना, अनन्य आश्रय लेना। धन्यवाद। अब मैं प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि समय हो गया है। क्या जी? एक प्रश्न इनका दो, चलो ठीक है, तीन, चलो तीन, एक प्रश्न आपका बोलो। हाँ, ये आदर्श है जो कि हम बनाते हैं किसी को, तो अपने जीवन का आदर्श अगर आपने बनाया है किसी को तो उसके आधार पर आप चलिए, और फिर आपको एक दूसरे का सहारा भी लेना है, तो हम सब लोग जो है एक दूसरे को सहारा दें और एक दूसरे का सहारा लें, है ना। तो यही प्रीति रक्षण है कि क्योंकि अमत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तो संदिचा रमंतिचा। तो सुनना है, सुनाना है कृष्ण कथा को, तो ये, और जो है वैष्णवों के 6 अपराध हैं इनसे बचना, नाम के 10 अपराधों से बचना, तो ये जो है हमारा। और आपका प्रश्न, चलो आप, हाँ बोलो।
मुझे
मैंने बताया कि बहुत कमियां हैं हमारे अंदर, बहुत कमजोरियां हैं हमारे अंदर, और जब रजोगुण, जिस समय हमारे अंदर रजोगुण था तो उस समय तो बहुत आकर्षण था, माया का या स्त्री का बहुत आकर्षण था, लेकिन हम केवल यही प्रार्थना करते थे भगवान से कि जैसे भी हो आप जो है मेरे लिए जो भी अच्छा हो, हितकारी हो, आप वही करिए, तो मेरे लिए जो भी हितकारी हो, कल्याणकारी हो, वही आप करिए मेरे लिए, तो इस तरह से रक्षा हुई। तो हमारी जो प्रार्थना मतलब भगवान से जो होती है तो यही होनी चाहिए कि जैसे मैं अपना खुद कल्याण नहीं जानता हूँ कि मेरा कल्याण कैसे होगा, है ना, तो आप ही कल्याण करने वाले हैं, तो अपना जो मन है वो आप समर्पित कर दीजिए, और आपके मन में जो भी इच्छाएँ हैं सही गलत आप वो प्रकट करिए, तो वो भी जो है एक समर्पण होता है। कि अपने मन को आप जो है भगवान के सामने आप प्रदर्शित करिए, रिवील करिए, ठीक है ना। आपका प्रश्न
तो जी, जैसा कि हम देखते हैं भगवद गीता भगवान ने बहुत सारे नियम कानून दिया कि इस अवस्था में कोई शरीर छोड़े तो धाम जा सकता है, चाहे ऊपर के लोगों में निकल को, लेकिन फिर हम देखते हैं कि श्री प्रभुपाद ने इस सब को सीधा बाईपास कर दिया कि नहीं तुम बस ऐसे भक्ति करो, चार नियम सुनो ना जब करो फिर मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तो कि इस तरह से कहना सही होगा कि भगवद गीता का जो ज्ञान है साधारण जनमानस के लिए भगवान ने दिया और शुद्ध भक्ति के संदर्भ में उतना पूर्ण नहीं है जितना शुद्ध भक्ति के लिए, जो श्री प्रभुपाद ने उसे
नहीं, उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि भगवान जो नियम बता रहे हैं तो वही नियम जो है हमेशा लागू होते हैं, वो नियम हमेशा लागू होते हैं। और अगर प्रभुपाद हमें कह रहे हैं और हम अगर प्रभुपाद के चरण चिन्ह में चल रहे हैं तो भगवान की जो है चरणों में हमारा मन लगेगा ही। तो ये अगर प्रभुपाद कहते हैं कि 16 माला जप करो, चार नियमों का पालन करो, है ना, तो अगर आप स्थिरता से करते हैं 16 माला का जप चार नियम, तो ये आपको जो है सही दिशा में ले जाएंगे। तो प्रभुपाद के वचन में शक्ति, और भगवान अपने भक्त के वचन को ज़्यादा मान्यता देते हैं, ठीक है।
जो प्रश्न है ना कि भगवत गीता के विषय में कि भगवत गीता के शुद्ध भक्ति कैसे प्राप्त हो, किस तरह की बात है, तो मैंने पहले भी एक कोट पढ़ के सुनाया था, तो जो पुस्तक श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार, इसमें भी वो कोट की चर्चा की है कि वो किस तरह से आश्चर्यजनक तरीके से मुझे मिला ऐसी अनायासी पढ़ने पर। उसमें स्पष्टली लिखा है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करना केवल उसका श्रवण करने से भगवद गीता का और उसकी उचित व्याख्या ग्रहण करने से ही शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। स्पष्टली लिखा अनुकूल अनुकूल से उस वाले श्लोक की व्याख्या में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी तो गीता का श्रवण करना है और उचित भक्त से उचित व्याख्या ग्रहण करना है। शुद्ध भक्ति के साथ में उसमें और भी कई लाभ करना है, तो आप पढ़ सकते हैं, समय होगा तो दो मिनट में उसमें से सुना सकता है।
अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा,
और वो बिल्कुल ऐसे बुला था मैंने अचानक ही, सुबह सुबह पुस्तक हाथ में ली, प्रभु जी बाथरूम गए थे, मैंने उसको देख लेता हूँ, जैसे ही खुला तो उसमें ये बात निकली, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा।
अगर आप लोग जो है शाम की क्लास में अगर बैठते हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन मैं किसी को मजबूर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसी पर और अपराध होगा, लेकिन प्रभुपाद ने नियम बनाया है, शाम की क्लास का जो है नियम बनाया प्रभुपाद ने, तो उसका जो है अगर आप लोग विचार करें तो विचार कर सकते हैं और क्या करना है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से फोर्स नहीं करूँगा आप लोगों को कि जिससे फिर कुछ और दूरी बन सकती है ना, इसलिए मैं आपसे दूरी नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कोई बात अपनी ओर से थोपूंगा नहीं, लेकिन प्रभुपाद ने जो है ये कहा है कि सवेरे और शाम का जो है जो क्लास है ये जो है विशेष रूप जितने दीक्षित भक्त हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है, ठीक है, धन्यवाद।
कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो ये दो चीजें करनी पड़ेगी तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, हम प्रभु जी का आचरण में देखते हैं कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, प्रकृति में ऐसे संकेत मिलते हैं कि प्रभु जी ये दोनों चीज़ कर रहे हैं, रूपात की व्याख्या प्रभु जी ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार पूरा बताते हैं और श्रवण भी कर रहे हैं, और हमारे लिए प्रभु जी की व्याख्या उचित है।
हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अच्छा वो कहाँ है वो?
Thank you. अरे ये वाला कितना है कम को दिया है ना प्रेजेंट पे बुलाए थे ना आपका रिकॉर्ड हो गया।